आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं। एक सर्वे में ये बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी के बाद पीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले दोनों चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती आ रही है और तीसरा चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन विपक्ष ने पीएम पद के लिए अपना चेहरा घोषित नहीं किया। नेटवर्क 18 के एक मेगा ओपिनियन पोल में कहा गया है कि सर्वे में शामिल 59% लोगों ने माना कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सक्षम चेहरा फिलहाल नरेंद्र मोदी है, हालांकि दूसरे नंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। सर्वे के मुताबिक 21% लोगों ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को सबसे उपयुक्त चेहरा है। इस मामले में राहुल की लोकप्रियता मोदी से 38% कम है। वहीं सर्वे में शामिल 9% लोगों ने माना कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पीएम पद के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। मेगा ओपिनियन पोल में 21 प्रमुख राज्यों के 518 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया। 12 फरवरी से 1 मार्च तक किए गए सर्वे में भारत के 21 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया, यानी कुल मिलाकर 95% लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ये सर्वे किया गया। ओपिनियन पोल के अनुसार राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए कारगर साबित हो सकता है। NDA को UP में 77 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केवल 2 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीत सकती है। दिल्ली में 6 नए चेहरों को टिकट, लोकसभा के जरिए BJP ने बिछाई विधानसभा की बिसात। भाजपा ने दिल्ली में लोकसभा का रण जीतने के लिए संगठन के दिग्गजों पर दांव लगाया है। दिल्ली की 7 लोकसभाओं में 6 चेहरे बदल दिए हैं। 4 सीटों पर प्रदेश पदाधिकारियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने बार बार बाहरी और सेलिब्रिटी को टिकट मिलने के आरोपों को दूर करते हुए लोकसभा के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। दूसरी सूची में पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। वह लंबे समय से संगठन में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। इनके जरिए भाजपा ने पंजाबी वोटरों को साधने का प्रयास किया है। उधर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उतारे गए योगेंद्र चंदोलिया की जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति ने उन्हें टिकट की लाइन में सबसे आगे कर दिया। भाजपा ने 7 लोकसभा सीटों के टिकट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सहारे पूर्वांचल समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। तिवारी तीसरी बार मैदान में हैं और पुराने सांसदों में केवल उन्हें ही टिकट मिला है। प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली और प्रदेश महामंत्री कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारा है। पहली बार 2 महिलाओं को टिकट देकर भाजपा ने महिला वोटरों में सेंध लगाने का प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट देकर गुर्जर और दिल्ली देहात में वोट बढ़ाने का प्रयास है। दलित नेता के तौर पर चंदोलिया और पंजाबी वोटरों के लिए हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते और राजधानी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने जमीनी नेताओं को मैदान में उतारा है। 3 पूर्व महापौर को इस बार टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया और पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ रही कमलजी सहरावत महापौर रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण के साथ पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है। लोकसभा में स्थानीय नेताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि काम करने पर उन्हें भी टिकट मिल सकता है। अलग अलग वर्गों को टिकट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। सेलिब्रिटी को इस बार चुनावी मैदान से दूर रखा गया है। बीती लोकसभा में पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली गायक हंसराज हंस को टिकट दिया गया था। कोविंद कमेटी आज राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन की होगी सिफारिश। देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए गठित कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इस बात की संभावना है कि इसमें एक साथ संसदीय विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की सिफारिश करेगी। यह कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अपनी सिफारिश के पीछे यह तर्क दिया है कि बार बार चुनाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था और समाज को होने वाली तकलीफों से बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि देश के किसी न किसी राज्य में प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहते हैं। कहीं विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं तो कहीं पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे होते हैं। साल में करीब 200 से 300 दिन मतदान में ही निकल जाते हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने से पहले कई बदलावों की आवश्यकता होगी। सभी चुनावों के लिए एक वोटर लिस्ट अपनानी होगी। इसके अलावा संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इस रिपोर्ट में एक रोडमैप प्रदान किया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा। कई राज्यों में अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनावों के साथ उन सभी राज्यों में चुनाव करवाने के लिए कुछ राज्यों में समय से पहले चुनाव करवाने होंगे। वहीं कुछ राज्यों की सरकार को विस्तार देना होगा। आपको बता दें कि हाल के कुछ दिनों में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। बीजेडी और एआईडीएमके इसके समर्थन में है। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे क्योंकि हरभजन सिंह ने आईपीएल 2024 से पहले कही बड़ी बात। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जून में वेस्टइंडीज और यूएसए में होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोहली को आगामी वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्टर्स टी20 में उनके खेलने के तरीके से संतुष्ट नहीं है। हालांकि भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का कहना है कि कोहली टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे क्योंकि उनकी नज़र कुछ बड़ा कमाल करने पर है। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि कोहली आईपीएल 2024 में तगड़ा कमबैक करेंगे। आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने जा रहा। कोहली जनवरी के बाद से एक्शन से दूर है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 17 जनवरी को अफगानिस्तान के विरुद्ध खेला जो टी20 था। वह निजी कारणों से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नहीं खेले। गौरतलब है कि कोहली के घर पिछले महीने नन्हा मेहमान आया है। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बेटे अकाय को जन्म दिया। कोहली के आईपीएल में खेलने की संभावना है, लेकिन वह अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के कैंप से नहीं जुड़े हैं। हरभजन ने न्यूज 24 स्पोर्ट पर कहा, विराट कोहली जब मैदान पर लौटेंगे तो आप उनमें गजब का फुर्तीलापन देखेंगे। कोहली उसी तरह से नजर आएंगे जैसे 10 साल पहले थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोहली के लिए क्रिकेट सबसे अजीज है। उससे भी बड़ी चीज उनके लिए परिवार है। उन्होंने इसीलिए परिवार को समय दिया। कोहली जरूर चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ कमाल करें। वह विराट रूप धारण करके वर्ल्ड कप जिताना चाहेंगे। कोहली ने हाल में क्रिकेट नहीं खेला है, मगर उन्होंने जब भी कमबैक किया है वो तगड़ा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह कमबैक कुछ बड़ा लेकर आए। भज्जी ने आगे कहा, आरसीबी के फैंस को भी कोहली के कमबैक से बहुत उम्मीद होंगी। आरसीबी के फैंस को लंबे समय से ट्रॉफी का इंतजार है। भारत भी ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है। जून में T20 वर्ल्ड कप होना है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम का खिताबी सूखा समाप्त होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी ट्रॉफी भारत लेकर आएंगे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में है। इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा है। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। श्मशान बन चुके गाजा में 9,000 महिलाओं की मौत। हर दिन 160 से ज्यादा दे रही बच्चों को जन्म। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच गाजा पट्टी से हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमले में तबाह हो रहे गाजा के हालात काफी बुरे हैं। यहां 60,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। गाजा शहर में गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा काफी ज्यादा है। यहां हर दिन 160 से ज्यादा महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं। ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच महिलाओं की बेहद कठिन हालातों में डिलीवरी हो रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह जानकारी दी थी कि गाजा पट्टी में लगभग 60,000 गर्भवती महिलाएं कुपोषण का सामना कर रही हैं। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के पास पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का भी अभाव है। गाजा की आबादी में 49% महिलाएं हैं, जिनमें बच्चे पैदा करने की उम्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। गोलाबारी और हमलों की वजह से अपना घर छोड़ने के कारण महिलाएं असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गाजा में लगभग 5,000 महिलाएं हर महीने बच्चों को जन्म दे रही हैं। इससे पहले 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गाजा में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर चिंता जताई थी। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गाजा में इजरायली हमलों के बाद मचे कत्लेआम की वजह शहर में महिलाओं और बच्चों की हालत बेहद दयनीय है। इजरायल के हमलों और पूर्ण घेराबंदी के कारण गाजा वासियों को भोजन, पानी, दवा और ईंधन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही महामारी और चिकित्सा सेवाओं पर दबाव के कारण शहर भर में स्वास्थ्य संकट भी बढ़ गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीनी महिलाओं और उनके परिवारों के खिलाफ इजरायली हमले और नरसंहार को तुरंत रोकने का आह्वान किया था। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विशेष रूप से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी महिलाओं के स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों का समर्थन करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2023 से शहर में 9,000 फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत की जानकारी दी थी।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।